कछु में चर्चा कर रहे हूँ। भगवान कृष्ण की और राधा रानी की लीलाओं को कौन वर्णन कर सकता है, जिसमें वो शक्ति देती हैं, जिसमें कृपा करती हैं, वही उनकी लीला को गान कर सकता है। कीरत कीरत कुमर की कह के थके गणेश, दस सत मुख वर्णन करत पार न पावत शेष। यानी कीर्ति यश, कीरत किसकी, कीरत कुमार की, कीरत कुमार कौन है, राधा रानी, कीर्ति उनकी माता का नाम है। कीर्ति कीरत कीरत कुमार की कह कह थके गणेश, गणेशी जो हैं, जो कितने प्राण जिन्होंने लिखे, सब काम किन्होंने लेखन कार्य किया व्यास जी के आदेश से, तो वो भी जो है उनकी कीर्ति का वर्णन नहीं कर सकते हैं। दस सत मुख, जिसके 1000 में सत कहते 100 को, और 100 का मतलब हो गया 1000, 1000 मुख है शेष भगवान के, तो शेष भगवान भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकते, थक जाते हैं। दस सत मुख वर्णन करत पार न पावत शेष, तो उनकी कौन बखान कर सकता है, तो जो उन पर कृपा करती हैं अपने चरणों की अपनी उसकी, वही उनके थोड़ा बहुत जो है अथाह समुद्र है, और समुद्र में से एक बूंद पानी कोई ले ले तो क्या घट जाएगा समुद्र का, तो उनकी लीला तो अनंत है, किसी के सामर्थ्य ही नहीं, फिर भी उनकी कृपा से थोड़े बहुत वर्णन मैं करता हूँ। जब ये मदन मोहन जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस दिन नंदगाम का भी उद्घाटन हुआ था, यहाँ मैं भी आया था उसमें, उस समय मुझे अभी तक याद है, कई साल हो गए इन बातों को, कि उस तो कुंभ था इलाहाबाद का, उस जाड़ों की बात थी, तो ब्रजवासी लोग कुंभ में गए थे, मैं भी गया था उनके साथ में, तो डॉक्टर विश्वरूप का फोन आया था मेरे पास, बोले महाराज याद कर रहे हैं आपको आना है, मैंने कि आ रहे हैं तो भाई हम तो कुंभ में कैसे आए यहाँ से, बोले आपको आना है कैसे भी आओ, मैंने कि भाई बड़ी टिकट भी होगी, रिजर्वेशन होगा, बड़ी दिक्कत होगी, जब रिजर्वेशन की चिंता मत करो और दुरंतों एक गाड़ी आती है इलाहाबाद से, उसमें उन्होंने कराया, उसी दिन चल दिया था मैं, और यहाँ आए पता लगा नंदगांव का उद्घाटन होना है, मदन मोहन जी का कहा उन्होंने, तो पीछे पता लगा नंदगांव, बड़ी खुशी हुई। मदन मोहन जी जो हैं ये, इनको चटोरा ठाकुर कहते हैं ब्रिज में, चटोरा जानते हो, चटोरा उसको कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा भोग चाहिए, बहुत ज़्यादा माल टाल चाहिए खाने पीने को, तो मदन मोहन जी में बहुत भोग लगते हैं, और इनके भक्त जो हैं वो भी बड़े विलक्षण हैं मदन मोहन जी के। सनातन गोस्वामी जी जो थे उनके ठाकुर हैं ये, जो आपके है ना, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट जी, जीव गोस्वामी जी, इस तरह से जो महापुरुष जो हुए हैं चेतन महापुरुष जी के पार्षद, उनमें से सनातन गोस्वामी जी के ये सेव्य हैं। सनातन गोस्वामी जी जब ब्रिज में भिक्षा करते थे, जगह जगह डोलते थे, उनका आवास नंदगांव में भी रहा है, नंदगांव भी बहुत दिन रहे हैं, रूप गोस्वामी नंदगांव रहे हैं, लेकिन ब्रिजवासियों ने दो साधुओं को अपना माना, एक तो है गोपाल भट्ट जी और एक है जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी नंदगांव में रहते थे, सब आदर करते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते थे ज्यादा, वो कहते थे कि ये जो है मुसलमानों का इन्होंने अन्न खाया है, मुसलमानों के यहाँ पर ये रहे थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, साकिर अल मल्ले को क्या क्या नाम थे उनके, हाँ, तो ये उनकी बात को बहुत सम्मान करते थे सब चीज़ है, लेकिन बात नहीं मानते थे उनकी, और वही बात जो इन्होंने कही उसी को गोपाल भट्ट जी ने कहा, उसको माना। गोपाल भट्ट जी पंडित थे और ब्रजवासियों ने उनको अपनाया, इसी तरह से जीव गोस्वामी को भी अपनाया उन्होंने। तो जीव गोस्वामी एक बार कोई दिग्विजय पंडित आए थे, वो सबको पंडितों को परास्त करते हुए आ रहे थे, जब रूप गोस्वामी के पास आए तो उन्होंने लिख दिया हम हारे और तुम जीते। अब ये जब रूप गोस्वामी के पास आए तो उन्होंने देखा ये तो कागज लिखा हुआ है रूप गोस्वामी का, उनको तो कोई परास्त नहीं कर सकता, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। ये जो भक्ति मार्ग का जो पथिक होता है उसको 6 चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहला तो ये है क्रोध भी है उसमें, भय भी है, दीर्घसूत्रता भी है, दीर्घसूत्रता कहते काम को टालने की प्रवृत्ति, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, इस तरह से छह अवगुण बतलाए हैं, तो इसमें क्रोध भी आया और यश की कामना भी हुई। तो उन्होंने पंडित को शास्त्रार्थ किया, उससे वो कागज भी ले लिया और उससे भी लिखवा भी लिया। उसको लेकर के बड़े खुशी खुशी रूप गोस्वामी के पास में गए और कागज को ये रख दिया। रूप गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया, मान कि तो भाई सांसारिक जीव है, इसको यश की कामना है, हम लोग तो विरक्त हो गए इस यश कामना से, तो बहुत दूर हो गए हम, तो तुमने तो अच्छा नहीं किया ये, जाओ मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता हूँ। उनका त्याग कर दिया उन्होंने, आपकी कथा में है रूप गोस्वामी जी की में, जब उनका त्याग कर दिया तो बड़े दुखी हुए, चले गए वहाँ से। गुरु आज्ञा थी, उनके चाचा भी लगते थे वो, और गुरु आज्ञा हो गई तो वो जो है ब्रज मंडल में ऐसी जगह पर रहे जहाँ कोई देखे नहीं, खाते भी नहीं थे। और साधु जो होते हैं बंगाली लोग, इन बंगाल में चावल की ज़्यादा प्रवृत्ति है, चावल ज़्यादा खाते हैं, और हमारे ब्रजवासी लोग चावल वावल होता ही नहीं है वहाँ पे, अब तो बहुत होने लगा है, लेकिन पहले ऐसी थी, वर्षा कम होती थी और गेहूँ तो अंग्रेजों के बाद में आया, उससे पहले चना ही खाते थे लोग, चना या उर्द की रोटी, जौ की रोटी, इनको ही खाते थे, गेहूँ भी नहीं होता था, और चावल के तो दर्शन ही नहीं होते थे। जब हम छोटे थे हमें याद है अभी तक, केवल एक दिन चावल बनते थे अमावस्या के दिन मंदिर में तो बनते थे, लेकिन घरों में अमावस्या के दिन खीर बनती थी, उस दिन चावल बनते थे एक दिन केवल एक महीने में। और जब साधुओं को नहीं मिलता था तो उनके बीमारी हो जाती थी उनको, जैसा अंदर तो इनके जलोदर हो गया, जलोदर जानते पेट में पानी सा भर जाता है। तो एक दिन जो सनातन गोस्वामी जी भिक्षा लेते हुए क्षेत्र में गए जहाँ ये दुबके हुए थे, तो उन्होंने कहा जो साधु वहाँ भिक्षा करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं राधे श्याम, कोई कहता कृष्ण बलराम, कोई कहता हरे कृष्णा, तो माताएं समझ लेती हैं कोई साधु दरवाजे पे आया उसको भिक्षा देती हैं। तो माता जो थी वो अपने बच्चे को रख रही थी, तो राधे श्याम उन्होंने कहा, एक बार कहा उसके बाद फिर दोबारा भी कहा, तो बोली माता जी अरे बाबा तुझे तो बड़ा बेसब्री है, तुझे बिल्कुल ही सब्र नहीं है, थोड़ी देर बैठना चाहिए भगवान का भजन कर, मुझे भी सुना और तू भी नाम ले भगवान का। अब वो आए फिर बोले उनसे कहा तुझसे तो हमारा बाबा ही बढ़िया है, तुझसे तो हमारा बाबा ही बढ़िया है। तो उन्होंने कहा जब साधु की किसी की बड़ाई कर सुनते हैं तो साधु जो श्रेष्ठ होते हैं उसे मिलना चाहते हैं, भाई कोई महापुरुष है तो उसे मिलना चाहिए, उसे दर्शन करने चाहिए। तुम्हारे बाबा कौन है? बल्कि हमारे बाबा तो का उसे ना मिले, बीमार है वो बाकी पेट में पानी भर गया हो। मैया बोली उनके अरे बीमार है तो उसे सेवा करनी चाहिए, कौन है? भिक्षा लेकर के उसकी खोज में गए तो उन्होंने देखा तो पेड़ों के झुड़पुट के अंदर छिपे हुए जीव गोस्वामी पड़े थे। उसको देख करके उनको बड़ी दया आई, उन्होंने कहा कैसे यहाँ पे हो? बल्कि अरे मेरे गुरु महाराज ने मेरा त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया तो लेकर के आए और रूप गोस्वामी से कहा तुम हमारे महाप्रभु जी ने शिक्षा दी है जीवेर दया, जीव पर दया करो, नामे नाम का स्मरण करो और जीव पर दया करो। क्या ये जीव नहीं है? इस जीव को क्यों तुमने वंचित रखा कृपा से? फिर उन्होंने जो उनको अपनाया उसको जीव को, तो ब्रजवासियों ने दो आदमियों को अपनाया भक्त में, तो एक तो थे गोपाल भट्ट जी जो कहाँ संकेत में रहते थे, राधा कुंड में रहे, वृंदावन में भी रहे, जिनके राधारमण जी हैं, और जीव गोस्वामी जो थे इनको भी ब्रजवासियों ने अपना बाबा कहा। तो मदन मोहन जी जो हैं सनातन गोस्वामी जी के हैं, सनातन गोस्वामी जी इनके मदन मोहन जी का बड़ा विचित्र इतिहास है। मदन मोहन जी पहले तो जयपुर में विराजते थे, पहले तो सनातन गोस्वामी के पास ही रहे। सनातन गोस्वामी की कथा ऐसे है, चतुर्वेदी एक महिला थी, पंडित थे चतुर्वेदी, मथुरा में जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनके पास में सेवा करती थी वो। और मदन ये जाते थे सनातन गोस्वामी जी भिक्षा लेने के लिए, तो मदन मोहन जी को निहारते थे उसके घर में, देखते थे एकटा साधु भिक्षा मांगते भिक्षा ली और चले गए, ये भिक्षा भी ले लेते और देखते ही रहते थे मदन मोहन जी को, इनकी टकटकी लगी रहती थी मदन मोहन जी की तरफ। तो इधर मैया बोली कि मदन मोहन जी मेरे से सेवा से अब ज़्यादा राजी नहीं रहते हैं, रात में सुपने में कहा है बाबा जी आए उसको दे देना, बड़ी दुख हो रही हूँ मैं इनके बिना कैसे रहूँ, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूँ सेवा करने में, इनको जब कष्ट होता है जिसमें ये राजी हैं उसी में मैं भी राजी हूँ, आप बाबा इनको ले जाओ, इनकी इच्छा है जाने की। तो सनातन गोस्वामी ले आए उनको, सनातन गोस्वामी ले आए तो सेवा करते थे, भिक्षा लाते थे ठाकुर जी को। तो बोले कि बाबा ये जो तू रोटी खवावे ना, ये ऐसी कर्री रोटी है, ये छाछ थे ठटकी जाए ठोकरते जाए बाकी थे, मैं छाछ ले छाछ पीता हूँ तो उसकी ठोकर लगती है जब अंदर जाती है, नहीं तो मम्मी पड़ी रहती है ये। अब वो समझ गए भाई इनके कुछ, बाकी मैंने तुमसे पहले ही कहा था भाई मैं तो साधु हूँ, मेरे पास में कोई वैभव नहीं है, बाकी कछु भाई नॉन वॉन तो ले आओ कर भाई, ये रूखी रोटी हम कहाँ तक खाएंगे, छाछ से ठोकर से जाए अंदर ये। तो उन्होंने खाई नॉन लाई मांग करके, नमक लगा करके बाटी बना करके उनको खिलाई। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे तीस दिन बाद बोले कुछ भाई मीठा मीठा घी भी ले आया कर, कुछ चपड़ तो दे भाई। अब वो बोले भाई तो बड़ी आफत लगी, कैसे करें, इच्छा भी हो सेवा करें, बोले कोई बात नहीं है मुझ पर सब चीज़ आती है, चेला चेता लूँगा मैं तेरे लिए, एक अपना कोई गोना लूँगा कोई जजमान। तो एक जो है पंडित जी वो सेठ जो है कोई जमुना जी में व्यापार करते थे आगरा से, उसकी जो नाव जो थी वो जमुना जी में हटक गई, नहीं चली आगे। तो वहीं पर एक लड़का आया, उसने कहा यहाँ पर एक साधु रहते हैं, बड़े भजनानंदी हैं, वो बात तो करते नहीं किसी से, पर तुम जा करके प्रार्थना करोगे तुम्हारी नाव जो है निकल सकती है। उसने कहा मन ही मन सोचा कितना सुंदर बालक है, और साधु बच्चा की बात में तो भगवान की वाणी होती है, झूठ थोड़ी कहेगा ये। गए सनातन गोस्वामी के, प्रणाम किया उनको, उनसे कहा महाराज मेरी नाव डूब गई है, ऐसे ऐसे एक बालक ने मुझे भेजा है। बालक कहाँ है? उनकी पता नहीं कहाँ है, बहुत बालक ने कहा था, चारों तरफ देखा बालक तो दिखाई दिया नहीं। मदन मोहन जी वो समझ गए सनातन गोस्वामी सब जो है मदन मोहन जी की लीला है। उन्होंने कहा भाई मेरी क्या कैसे निकालूंगा, मेरे पास ना तो कोई जादू है ना कुछ है ना मेरी सामर्थ्य है। फिर भी उन्होंने नार जो थी वो निकल गई, और वो जो द्रव्य था उससे वही मंदिर बनाए, मदन मोहन जी का देखा होगा आपने जैसा ये मंदिर है, इसी तरह का मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है वो बनाया उन्होंने। फिर जो है जयपुर चले गए, तो जयपुर में राजा का नाम था गोपाल सिंह जी, उनकी लड़की थी तो वो बड़ी भक्त थी, और वो मदन मोहन जी से बात करती थी, मदन मोहन जी से प्रेम भी करती थी बहुत ज़्यादा। अब उसका विवाह हुआ वो करौली नरेश से हुआ, करौली नरेश से जब विवाह हुआ तो लड़की ने कह दिया मैं विदा नहीं होती हूँ, मैं मदन मोहन जी के बिना नहीं जा सकती, और जिसके साथ में फेरा पड़े हैं उसके साथ तो जाना ही पड़ेगा भाई, तुमने अग्नि के सामने वचन लिया है पति का अनुगमन करना पड़ेगा। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी जब तक मदन इनको नहीं दोगे ठाकुर जी को, और राजा भी कैसे छोड़े ठाकुर जी को, बल्कि ठाकुर जी को मैं नहीं छोड़ सकता, जाए या मत जाए, दोनों की जिद हो गई। फिर बोले तुम अपने इसको मैं आंखों पे पट्टी बांध दूंगा तुम्हारे पे, जैसे गांधारी के बांधी गई थी, तुम जो है अगर यदि इतनी शक्ति हो तो पहचान लेना। उनके अगर मदन मोहन जी मेरे सच्चे है, मैंने हृदय से प्यार किया है उनको, तो जरूर उनको मैं पहचान लूंगी मैं, उनकी ठीक है। और भी इसी तरह के श्री विग्रह बनाए गए मदन मोहन जी जैसे, और एक कोठरी में उनको विराजमान किया, और उनके बीच में छिपा करके मदन मोहन जी को, ठाकुर जी बोले मदन मोहन जी उस लड़की से मैं अपनी उंगली ऊपर कर दूंगा, मैं जब तुम आएगी मैं उंगली ऊपर कर दूंगा, तुम मुझे उंगली को पकड़ लेना। अब जो है ठाकुर जी ने ऐसा ही किया, जब देखती आई तो ये मदन मोहन जी नहीं है, ये मेरे मदन मोहन जी नहीं है, ये मेरे मदन मोहन जी, जैसे ही आई असली के पास में उंगली हो उनकी बंसी भी टेढ़ी हो गई, उंगली से बंसी भी टेढ़ी हो गई, उन्होंने उंगली पकड़ ली। वो अब राजा को देने पड़े वो, तो वो चले गए वहाँ। मैंने सुना है कि मदन मोहन जी का प्रसाद जो है राजघराने के लोग नहीं लेते हैं जयपुर के, क्यों? उनकी लड़की है, जब लड़की को दहेज में दे दिया तो उनके यहाँ का प्रसाद वो मदन मोहन जी का नहीं लेते हैं, ऐसी मदन मोहन जी की लीला है। मदन मोहन जी के भक्त थे करौली में, भक्त हैं कारे खां, सुना होगा आपने नाम, कारे खां भक्त हैं, मुसलमान थे, उनका लड़का मर गया था, उसका त्याग की कर दिया मुसलमानों ने, उनके बच्चे को भी मदन मोहन जी ने जिंदा कर दिया। ऐसे एक भक्त हुए हैं सूरदास मदन मोहन, ये बड़े विलक्षण संत थे, ऐसे सूरदास मदन मोहन हुए, इनकी कविता बिल्कुल सूरदास जैसी होती थी। नाम मदन मोहन था इनका भी, मदन मोहन, तो सूरदास की वजह से इनको सूरदास मदन मोहन कहते हैं सब भक्त लोग, आज भी इनको सूरदास मदन मोहन के नाम से विख्यात है। ये राजा अकबर के पीरियड में, मुसलमानों के पीरियड में, संडीला जगह है एक लखनऊ से आगे यूपी में, तो वहाँ राजा अकबर की वो बनती थी, वो टकसाल जिसमें सिक्के डाले जाते हैं, चांदी के रुपया बनते थे, और उस समय चांदी के रुपये को सड़ीला ही कहा जाता था, सड़ीला सड़ीला। तो ये जो थे, एक बार वो जा रही थी, गुड़ गुड़ होता है, गुड़ होता है, गुड़ की मंडी लगी। अब ये गए खरीदने के लिए, गुड़ को खुशबू आई इनको, तो इन्होंने कहा इस गुड़ को हम खरीदें, मदन मोहन जी के लिए पुआ बनवाएंगे, मदन मोहन जी के लिए पुआ बनवाएंगे। तो दुकानदार जो था उसने कहा कि भाई कितने रुपए किलो है, तो बोले इस समय पर चलते एक रुपये का मन है 40 किलो, पहले 20 किलो का मन माना जाता था, 20 शेर का उस सब पीरियड में, 20 शेर मन को, मतलब ये एक रुपये का 20 शेर है, मन है। उसने कहा मन कहा, तो उनके अरे मेरे मन में जो आ रही है तो ठाकुर जी पूरी करें, मन कह दिया, मन का मतलब 40 किलो से नहीं लगाया इन्होंने, अपने मन से लगाया, मन से। और वहाँ दूसरा के ऊपर ही आ गया, उसने उससे ज़्यादा दाम बना दिए, बस एक रुपये से उसे 1.25 रुपया कह दिया, इन्होंने 1.5 रुपया कह दिया, ऐसे करते करते वो 100 रुपये पर बाड़ी पहुँच गई उस पीरियड में। इन्होंने वो जो पूरा खरीद लिया, वो बैलगाड़ी में करके मदन मोहन जी के लिए भेज दिया। इधर मदन मोहन जी बाट देख रहे, और मेरे भक्त ने गुड़ भेजा है, आज तो पुआ मैं उसी के खाऊंगा, आज तो मैं पुआ उन्हीं के खाऊंगा। कभी छत पर चढ़ कर देखें, कभी वहां से देखें, बोले भंडारी आएगा तो इसको तो रख देगा, और नए गुड़ को रख देगा, पुराने गुड़ में से माल बनाएगा वो, और ये उसने भेजा, उसका प्रेम आ रहा है इसमें। तो मदन मोहन जी ने जैसे ही रात में आई गाड़ी, उतार करके स्वयं और अपने हलवाई बन के पुए बनाने लगे वो। तो इसलिए कह रहा हूँ चटोरा है ठाकुर जी, ये बहुत चटोरा है, हर चीज़ के पहले नॉन चाहिए, फिर मिठाई चाहिए, अब जो उसके पुआ पे भी नियत दिख गई इनकी। ऐसे ही गोविंद देव जी को कहा जाता है चित्त चोर, वो जिसके भी करते हैं दर्शन करता है उसके मन को हर लेते हैं, वो चित्त चोर कहलाते हैं। ये भक्तों की लीला है भैया, ये भक्त तो भक्तों की लीला को कौन पार कर सकता है। एक थोड़ा सा प्रसंग और कहूँ सूदा मदन मोहन के बारे में, जो एक बार कुंभ लगा इलाहाबाद में, तो कुंभ में साधु लोग जा रहे थे, राजा उसके खबर आई कि 13 लाख रुपए भेजिए, 13,000 चांदी के, 13,000 रुपए के लिए संदेश आया। तो साधुओं में वो 13,000 रुपए थे वो खर्च हो गए, और उन्होंने पत्थर भर करके पेटियों में वो भेज दिए, उस पर लिख दिया है संदेश, 13,000 सड़ीले आए संतल मिल गटके, गटके मतलब जानते हो खा गए, संतल मिल गटके, और सूरदास मोहन मदन मोहन आधी रात को सटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात को सटके, सटक गए है, सटके मतलब चले गए कहीं। जब वो खोली गई पेटी तो वो पत्र मिला उसमें कागज, वो राजा के सामने दिया गया, राजा बोले ये तो समझ में आया सटके, पर ये समझ में गटके तो समझ में आया, लेकिन सटके क्यों, जाना नहीं चाहिए था। तो उस समय पर उनका जो दंडाधिकारी था उसका नाम था दस्तम खां, तो उसको पता लगा, चारों तरफ से घोड़े दौड़ाए, मदन मोहन जी को पकड़ करके ले आए, और उनके ऊपर में उन्होंने कोड़े बरसाए, और गरम तेल करके इनके ऊपर में छोड़ा गया, अंदाज लगाए कितना कष्ट हुआ होगा मदन मोहन जी को। तो इन्होंने एक बहुत जब कष्ट पाए, एक महीने के बाद में पत्र लिखा राजा के लिए, नवाब के लिए जो राजा थे, उन्होंने कहा एक तम जग अंधियारो करत, एक अंधेरा जो होता है पूरे संसार में अंधेरा कर देता है, तम माने अंधेरा, डार्कनेस जो होती है उसको तम बोलते हैं, और ये तो दस्तम है, दस्तम कितना खर्च कष्ट देगा, दस्तम ते रक्षा करो दृढ़मणि अकबर साहब, दृढ़मणि कहते हैं सूरज को, वो अकबर मुसलमानों में अकबर एक खुदा का नाम भी अकबर है, अकबर का मतलब राजा अकबर से ही नहीं है, अकबर का मतलब खुदा से भी, अकबर खुदा को भी अकबर कहते हैं। जब उसने देखा ये तो फिर उनको छुड़वाया इन्होंने, और फिर रहे नहीं वहाँ से, उनसे कहा तुम जो पुरानी पदवी को संभालिए वो चल दिए इन्होंने। फिर यहाँ ब्रिज में आए हैं, केशव देव जी के मंदिर में रहे कुछ दिन मथुरा में। केशव देव जी की चोरी हो गई थी, तो चोरी हो गई तो बोले भगवान कृष्ण की चोरी गोपियों को अलावा कोई कर नहीं सकता है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया पद गाए हैं। अब भगवान कृष्ण की लीला पे चलते हैं भैया। भगवान कृष्ण जो है, जन्म तो हुआ जेल में, और मामा कंस जो बड़े खिलौने भेजते थे इनके लिए खेलने के लिए, कभी पुतना को भेजा, कभी सकटासुर को भेजा, सही है ना, कितने खिलौना भेजे। और ये इन्होंने जो है कोई हथियार नहीं लिया, चटपट में सबको खिलौने तोड़ दिए। खिलौने जब तोड़ दिए तो अब मैया बड़ी चिंता करी कैसे करे, बाबा ने चिंता किया तो गोकुल को उन्होंने त्याग दिया। गोकुल जो उनका गांव था, वो वहां से आकर के नंदगांव में आए। नंदगांव में की लीला का वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी आए ब्रज में। भगवान कृष्ण की सूरदास जी ने तो वर्णन किया ही है, तुलसीदास जी ने राम कथा गाई थी, भगवान कृष्ण के गुण नहीं गाए थे। तो एक बार वो जब यहाँ आए तो जब गोकुल में आए, वहाँ आए वृंदावन में, तो वो जो है ना महादेव जी वहाँ के जो हैं गोपेश्वर जी, उन्होंने उनको प्रेरणा दिया गए से। तो बोले कि जहाँ पर संत रहते हैं उन्होंने भक्तमाल लिखी है, भक्तों के चरित्र गाए हैं, नाभादास जी, नाभादास जी के यहाँ पर आज भंडारा है, भंडारे में जाकर के प्रसाद लो। वो कभी भंडारे में गए नहीं थे जीवन में कभी, तुलसीदास जी, उनको भेज दिया वहाँ, गए वहाँ। तो जिनको निमंत्रण देते हैं उनके लिए पर्ची देते हैं, टिकट, मान ली 100 आदमी है तो 100 आदमियों को पर्ची दे दी, उन्हीं को दक्षिणा मिलेगी। बाकी के जो आते हैं तो वो बिना निमंत्रण के होते हैं, उनको अलग व्यवस्था कर देते हैं। बाकी कोई जाता नहीं है फिर भी चला आया तो उनके लिए अलग कर देते हैं। ये वहाँ गए तो पंगत लग चुकी थी, पंगत लग चुकी थी, तो फिर जो है क्या किया जाए, तो दरवाजे के पास ही बैठ गए, चप्पल जूते पड़े हुए थे साधुओं के। और परोसने वाला आया, उसने खीर परोसी, तो इनसे कहा पात्र कहाँ है, मान के मैं तो पात्र हूँ ही नहीं, मैं तो अपात्र हूँ और मेरे पास कोई पात्र नहीं है। तो उन्होंने साधु की जो पनाह जो थी जूती उसी को कर दिया, इसी में कर दीजिए खीर। उनका भाव तो ये था, ब्रिज में रज में है चमड़ा हो गया, चमड़ा कहाँ रहा, ये तो पवित्र हो गया ब्रज में रह करके। और वो साधु ने परोसने वाले ने झगड़ा कर दिया, ये कहाँ से आ गए, कैसे कैसे साधु आ गए हैं, और प्रसाद को कहीं इसमें दिया जाता है। तो एक आया दूसरा भी आया, झगड़ा हो गया वहाँ परोसने वालों में। अब ये नाभादास जी ने सुना, नाभादास जी के नेत्र नहीं थे, उनकी ऐसा कौन संत है जिसने जूते को आगे कर दिया, पनाह को जिसने आगे कर दिया, तो कोई महापुरुष हो सकते हैं उनके, वो समझ गए इसको, त्रिकालदर्शी थे वो। अब जैसे ही आए वो तो उनके चरणों में गिर गए, बोले मैंने 1 से 8 ब्राह्मणों को दिया, वो 1 से माला है, माला 1 से 8 भक्त माल, माला है ना माला, मुझे सुमेरु नहीं था, मुझे सुमेरु मिल गया, माला में सुमेरु होता है ना, पर मुझे सुमेरु मिल गया मुझे ये। अब प्रसाद पा करके सत्संग किया, उन्होंने कहा मेरे लिए आदेश, कि आप राम जी के धाम में तो रहे ही हो, ब्रिज में पहली बार आए हो, जाइए ब्रिज धाम में घूमिए, आप भगवान कृष्ण की लीला आपको स्मरण होंगी सब। अब सबसे पहले गोकुल गए, और गोकुल में इन्होंने देखा माता यशोदा जो है लाला को गोदी में ले हुए उछाल उछाल करके खेल रही है, खिला रही है। श्याम सुंदर कहते हैं मैया से, हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि मैया तेरे जिसमें रोमांच क्यों हो रहा है शरीर में, बड़ी प्रसन्नता हो रही है तुझे, ले उच्छंग सुत जसोदा मैया कर रही है। तो जसोदा मैया कहती है उनसे, लाला तेरे मुख को देखती हूँ तो मुझे आनंद हो जाता है, मेरा हृदय कमल तेरे मुख को देख करके, चंद्रमा जैसे मुख को देख करके मेरा समुद्र जो है उमड़ पड़ता है, हृदय हृदय समुद्र। श्याम सुंदर कहते हैं तुझे जितना आनंद आ रहा है मुझे भी तो दे इस आनंद को। तो जसोदा मैया कहती है लाला तेरे भाग इतने बड़े नहीं है, तू ले इस आनंद को, मैंने तपस्या किया है पहले तो आनंद को मैं ले सकती हूँ, तेरे पुण्य नहीं है, तेरे पुण्य इतने नहीं है जो तू इस आनंद को ले सके। ऐसा जो है तुलसीदास जी ने वहाँ देखा, और वहाँ के ब्रजवासियों से बोले कि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, मगर ठाकुर जी कहाँ गए, मगर ठाकुर जी नंदगाम गए, ठाकुर जी नंदगाम गए। और वहाँ से नंदगाम चल दिए वो तुरंत गोकुल से, ठाकुर जी नंदगाम गए। और नंदगाम में जैसे ही आए तो नंदगांव में जसोदा मैया दिखाई दी उनको, बिल्कुल दिव्य दृष्टि। और यशोदा मैया लाला से कहती है, लाला तेरी कल बात चली थी सगाई की, छोड़ो लाल ललन लड़काई, लड़काई मतलब शैतानी, उद्दंड पढ़ना जो करते हो उसको छोड़ दो, कि तेरी जो है बाबा ने बात चलाई, तेरे बाबा ने सगाई की ब्याह की बात चलाई है, आज बरसाना से तेरी सगाई वाले आएंगे, तू इस लड़काई को छोड़ दे। क्यों भैया, लड़काई तो नहीं छूटी जाती है, बल्कि ऐसा है छोड़ेगा नहीं तो तेरी सगाई नहीं होगी, सगाई नहीं होगी तो दुल्हन कहाँ से आएगी, तू इसको छोड़ दे। क्यों पूछते, क्यों बल्कि डरे हैं सास, तेरी सास जो है ससुर डरे है, और तेरी दुल्हनिया आएगी वो जो है वो भी जो है संकोच करेगी तुझसे मिलने में, वो कहेगी चोर के संग में ब्याह दिया मुझे, तो बाकी मैया तो मुझे तैयार कर दे उसके लिए। तो उबट नहा, उबट करके उपटा लगा करके स्नान कराया ठाकुर जी को, चुटिया गूंथी बढ़िया व्यवस्था करके, और बन कही मैया काल भयो, कल हो गई अब तो कब आएगी मेरी दुल्हन, उनको बुला उनको जल्दी, सगाई वालों को जल्दी बुला। तो बल्कि जब सोए हों, जब तुम सो जाओगे तो कल होगी, जब सो जाओगे तो कल होगी, जब श्याम सुंदर लेट गए, बल्कि भैया सो गया मैं और फिर उठ गए, बल्कि अब कल हो गई, अब जल्दी दगा बुला उनको, सुनो अब कल हो गई, कल हो गई। जब इसको देख करके जो सखी जो थी मुस्करा गई, पास में कोई सखी सखी, जसोदा मैया की गोद में जा करके दुबक गए वो, तुलसीदास जी देख रहे इस तरह से बड़ा उनको, जहाँ जहाँ गए वहाँ सब उनको लीलाएँ स्मरण हुई। अब नंदगाम बरसाना का जो संबंध है वो विवाह शादी का ही है, आप लोगों के यहाँ तो परंपरा अलग है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं, उसको कोई महत्व नहीं देते हैं, जो आप जो अल्पबंधियों को वाली भी बात करते हैं, हमारे यहाँ इसका कोई मान्यता नहीं है ना कोई मानता है। हमारे यहाँ तो एक ही आद्य शक्ति राधा रानी श्याम सुंदर की प्रिया है, तो जब राधा रानी खेलती हैं कीरत मैया के महल में, सखियों को लेकर के चलती हैं नंद भवन की तरफ, चल रही हैं राधा रानी, और विशाखा जी बोली कि मेरी मैया ने तो मुझे काम बताया है, तो मैं तो राधा रानी जी से कहती है मैं तो जा रही हूँ, ललिता सखी भी कह देती मैं भी जा रही हूँ, आठों सखियाँ चली जाती हैं, वो चलती हैं नंद भवन की तरफ में, तो वहीं पर श्याम सुंदर आते हैं, पूछते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्याम सुंदर पूछते हैं गोरी मतलब राधा रानी से तुम कौन हो, बूझत कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी नहीं कब हो ब्रज खोरी, खोरी माने गली, तुम कौन की बेटी हो, मैंने तुमको कभी देखा नहीं है ब्रज की गलियों में। राधा रानी कहती हैं सुमन श्रमण सुनत, श्रमण माने कानों से सुनती हैं, श्रवण सुनत नंद महर को ढूंढा, कर तुम नंदवा के लड़के हो ऐसा मैंने सुना है, करत रहत माखन दद चोरी, तो माखन और दही की चोरी करते हो ऐसा मैंने सुना है। श्याम सुंदर कहते हैं तुम रो चोर कहा हम लई हैं, तुम्हारा हमने क्या चोर लिया, क्या तुम हमको चोर नजर आते, हम तो चोर नजर आते हैं, बल्कि लगते तो नहीं चोर जैसे, लेकिन लोग कहते हैं, बल्कि लोग तो जाने क्या क्या कहते हैं मेरे बारे में, संग चलो मिल जोड़ी, हमारी तुम्हारी जोड़ी जो है बहुत अच्छी है, हमारा तुम्हारा जोड़ा जो है। तो श्याम सुंदर ने राधा रानी के कंधे पे हाथ रखा, राधा रानी ने श्याम सुंदर के कंधे पे हाथ रखा, वो दिव्य छवि जो है दिव्य रूप से ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं। अब जो नंद भवन में आए तो नंद भवन में यशोदा मैया के राधा रानी के मैं तो नहीं जाती, बल्कि मैं तुम अपनी माँ से पूछ के आओ, मैं तुम तो श्याम सुंदर गए तो मैया से बोले मैया मैं आज जमुना जी पर गया था गैया चराने के लिए, तो गया तो वहाँ पर मैं रास्ता भूल गया, अरे जा भल्लड़ तू बड़ो भोलो है रास्ता भूल गया, फिर कैसे आयो घर पे, बाकी मुझे ये लड़की मिल गई है और ये मुँह हाथ पकड़ के यहाँ ले आई है, ये मुँह को हाथ पकड़ करके यहाँ ले आई है, और कहाँ है वो बुला खेला। अब गई श्याम सुंदर, मेरी मैया ने कह दिया है आ जाओ, बोल के ऐसे नाम है हम तुम्हारी मैया ही ले आएगी जब ही आमेंगे। जसोदा मैया ने फिर दोबारा कहा अरे तू जा तो सही, जहाँ तक कैसे लायो, अब तक कैसे आई है तेरे संग, बाकी मैंने दो चार सौगंध दबा दी भाई, तुम्हारे बाबा की सौगंध है तुम्हारी मैया की सौगंध है, चलो मेरे घर, बाकी एक काम कर तू अब मेरी सौगंध और दबा दे सो अपने आप आ जाएगी वो। तो उन्होंने कहा मैया ने ऐसे कही है, गई भीतर उनको देख करके राधा रानी के रूप को देख करके यशोदा मैया के नेत्रों में प्रेम के आंसू मढ़ाए, उनको गोदी में बिठाया, उनकी प्रसाद खिलाया, बड़ी अच्छी तरह से इनको लाभ भगवत की उनकी, उनके वस्त्र उतार करके सुंदर वस्त्र पहनाए और ऊपर विधाता से कुछ हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। उनके जो है जो जैसे बहू की गोद भरते हैं ना, उस तरह से मिठाइयों से फलों से उनकी गोद भर दी। सिंगल अब यशोदा मैया कहती हैं, वो कहती हैं राधा रानी, मैया मुझे बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, अब तुम मुझे जो है बरसाने के लिए। श्याम सुंदर बोले कि मैया मैं करे आऊँगा, चिंता मत करो, बाकी तुम मत जाइयो वहाँ पे, रास्ता में से चली जाएगी वहाँ से बरसाने के सीमा पे, छोड़ देना, सीमा का मतलब उसके बाउंड्री पर। वहाँ श्याम सुंदर लेके जा रहे हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं उनसे, तुम एक बेर सुबह शाम मुझे दर्शन दिया करो, बाकी हम तुम्हारा नाम भूल गए, गांव को नाम भूल गए तो कैसे पता लगेगी, बाकी तुम नाक पे हाथ रखोगी तो नाम याद आ जाएगा नंदगाम, और कान पे हाथ रखोगी तो नाम आ जाएगा खाना। तुम जो तो राधा रानी जाती है, फिर बोलती है, अरे सुनो सुनो, हम तो भूल गए तुम्हारा नाम, बल्कि तो नाक पे हाथ रखो, बल्कि कहा याद आया वो नंदगाम, वो कान पे हाथ रखो कहा याद आया वो काना कुमार कान। फिर गए, फिर राधा रानी फिर बोली, अरे भैया हम तो फिर भूल गए, और एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते, एक दूसरे बिछड़ना चाहिए। अब राधा रानी गई कीर्त महल में, तो कीर्त माँ कैसी है, अरे लाली तेने ये बड़ो सुंदर श्रृंगार किया है, ये मेरे वस्त्र नहीं है, ये कौने उपकार किया तो पे, मान कि मैया मैं आज खेलते भे नंदगाम चली गई, नंदवन में जाके मैंने देखी तो वहाँ की जो मैया है यशोदा मैया, उनने मेरो श्रृंगार किया, उनने मेरी तिल चामरी से जो गोड़ भर दी नहीं, और मैया उनने बड़ो स्नेह जताया, वानी और कहा गई, वानी और जो है बाबा को गारी दही, बाबा को तो कीर्त उनको भानु बाबा को लिए, बल्कि अरे तेने सुन ली ना, मैंने मैया खूब सुना दी उनको ऐसे ऐसे बच्चों से बात होती है। अब और कहा करीब इन्हने यशोदा मैया ने, मैया ऊंचे निहार के, ऊंचे निहार के और झोली पसार के, झोली पसार करके ना जानो रानी जी मांगियो कहा है, मुझे पता नहीं है कोई चीज़ मांगी मैया उनने विधाता से। अब तो मैया बड़ी संकोच में पड़ गई, मन की कोई टोटका कर दियोगा मेरी बेटी पे, का चीज मांग सकें, नंदभवन में कोई चीज़ की कमी नहीं है तो मांग कहा सकें। तो पूर्णमासी प्रोहतानी को बुलाया गया, पूर्णमासी प्रोहतानी को बुलाया गया, पूर्णमासी प्रोहतानी आई तो उनसे पूछ कह रही हैं, आज मेरी बेटी नंदगाम गई, नंदभवन ने यशोदा मैया ने बाकी गोद भर दी नहीं तिल चामरी से, और जो है बाकी कहा जाए पता नहीं ऊँचे निहार के नी झोली में से झोली पसार के पता नहीं क्या मांगा है, मान कि ऊंचे गिर शहर पे महल ब्रजराज जी को, उनको महल है ऊंचे नंद भवन में, संपदा कुबेर और वैभव पुरंदर सो, कुबेर जैसी संपदा है उनके पास में नंद बाबा के पास में, और पुरंदर कहते हैं इंद्र को जैसा वैभव है उनका, कोई कमी थोड़ी है उनके यहाँ पे, एक चीज की कमी है उनको, लड़का जो है कुकार हो है भाई, उसका विवाह नहीं हुआ है, तो तुम्हारी लड़की को ही मांगा होगा उन्होंने वैभव पुरंदर सो। तो कह रही है आपके ये कैसे कह रही हो, कहीं जो है इनको मेल है वो कारे और ये गोरी चंद्रमा जैसी, और वो जो ऐसा है कारी रात में जैसे कुछ दिखे भी नहीं कोई घनो अंधेरों कारा सो। वो कह रही अरे कोई बात नहीं है, और कोई बात कैसे नहीं है, और उनमें तो चोरी के लक्षण भी हैं, कोई भी जब विवाह करता है लड़की का तो अपने समान रूप में करता है, अच्छा स्टैंडर्ड हो देख करके करता है, वो चोर है वो उसके लिए चोर लवार के लिए कैसे कर दे, गली गली में बाकी बदनामी है। मान के देखो जी जगत में देख ही रही सब चोर, संसार में ऐसा कौन है जो चोरी नहीं करे, सब चोर हैं, कहा चोर कहा ब्रह्मा चोर, ब्रज में आए गाय बथ चोराए उन्होंने, इंद्र चोर पृथ्वी को है चोर, पृथ्वी भगवान का घोड़ा चोर लिया था, और शंकर चोर, शंकर भी चोर है, हर के अवगुण को छोड़ते हैं जो जो शिव से पुकारता है, जो शिव से कह पुकारे, और सब मिल चोरी करी श्याम की, संत चोर, संत भगवान जो आप साधु लोग हैं ना साधु लोग, ये भी चोर है, भगवान का हृदय चोर लिया इन्होंने, संत चोर हरे हृदय चोरायो, और सूरदास कहां लो वरनो माखन चोर करना, ये तो माखन चोर है भैया, माखन चोर के लिए कहा। और देखो आज से कुछ समय पहले बिरसमान बाबा और नंद बाबा चौपड़ खेल रहे थे, चौपड़ जानते हो, चौपड़ शतरंज जैसे चेस, चेस नहीं चौपड़ अलग खेल होता है। तो उसमें जो है ये कहा कि चौपड़ में जो जीतेगा उसका तो लड़का रहेगा, शादी होगी और जिसकी लड़की होगी वो उसके लिए विवाह करेगा, ये चौपड़ में तय हो गया था। तो देव योग से तुम्हारे घर लाली है गई, उनके घर लाला है गए, तो ये तो तुम्हारे कॉल करार पहले से ही प्रोमिज है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, संबंध कर दे, तुम्हारे संबंध तो कर दें, लेकिन कौन लेके आवे वो लाला को, हमारे घर पे देख भी आमे यहाँ के, हम लेके आमेंगे। और श्याम सुंदर गए वहाँ पे, वो पूर्णमासी प्रभुतानी गई, उनको बुला करके लाई श्याम सुंदर को, ग्वालवाल भी आए। तो ग्वालवाल कहते हैं जब तेरे कार्य को भया है जाओ, हम गोरे गोरे ने कौन पूछे को पीछे, पहले हमारा करवा। बोले दाऊजी को ले चल, भाई दाऊजी जाएंगे तो सब ये कहेंगे दाऊजी का पहले विवाह करो, मेरा कोई नहीं करेगा, इसे दाऊजी को छोड़ दो, दाऊजी को छोड़ दो। फिर श्याम सुंदर के संग में सखा आए और उनकी सगाई इत्यादि का बाणक बना, ये उनकी श्याम सगाई की लीला है। अब जो है अन्य लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं। यशोदा मैया ने एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा भाई बहुत चतुर है या नहीं है, उसका वो देखना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। तो गाय श्याम सुंदर धो रहे थे, तो यशोदा मैया ने उनसे कहा बेटी तुम भी धो के दिखाओ। तो वो बछड़ा को धोने लगी, वो बछड़ा बछड़ा के दूध देता है, तो बोल के मुझे पता लग गया तू बहुत चतुर है मुझे पता लग गया तू बहुत चतुर है। फिर जो है एक बार इसमें है, एक सेकंड, राधा रानी को श्याम सुंदर की मुरली मिली, मुरली जानते बंसी बजाते हैं, तो मैं हरि की मुरली पाई लेकर के नंद भवन में पहुंची। वो कहती हैं यशोदा मैया से, मैया मुझे श्याम सुंदर की मुरली आज जो कहीं मिली, और मुरली मिली है तो मैं इसको देने के लिए आई हूँ। देने के लिए क्यों आई है, श्याम सुंदर के दर्शन करने आई है। मैं हरि की मुरली बन पाई, बन माने जंगल में मिली मुझे, सुन जसमत संग छाण आपनो कुंभर जगा देने आई, अपने कुंभर को जगा दो और इसको मैं देने के लिए आई हूँ। तो वो श्याम सुंदर जग गए, वो कहते हैं कि जैसे किसी का पर्स मिल जाए, पर्स में दे दे भाई हम आपका पर्स मिला है, तो पर्स वाला कहे भाई इसमें तो मेरे 1000 रुपये और थे, तो वो देने आया है वो चोरी थोड़ी करेगा, लेकिन वो कहे मेरे 1000 रुपये थे, 1000 रुपये और दो भैया, ऐसा भी हो जाता कि नहीं हो जाए। तो श्याम सुंदर कहते हैं सुन प्रिय बचन, राधा रानी का जैसे बचन सुना बेहस उठे बैठे, एकदम हंस करके बैठ गए। फिर कहते अंतर जामी कुमर कनाई, मुरली संग मेरी हती पहुंची, पहुंची कहते हैं यहाँ पर जो कड़ूला पहनते हैं ना हाथों में जो होता है उसको पहुंची कहते हैं, पहुंची इसको मेरी सोने की पहुंची और थी इसमें मणियों की जड़ी हुई पहुंची, दे राधे ब्रिस्वान दुआई, तो ये ब्रिस्वान बाबा की सौगंध है, अपने बाबा की सौगंध उसको दे दुहाई। उस राधा रानी बड़ी चतुर थी, बोली मुझे तो नहीं मिली, मैं निहार नीचे नहीं देख, मैंने नीचे नहीं देखा था, जो मुझे पड़ गई नजर उसको तो मैं ले आई, हो सकता है वहां रह गई हो, तुम चलो उसको देखते हैं दोबारा, चलो हमारे साथ चलो, मैं निहार नीची नहीं देखी, चलो संग देव ठोर बता, मैं तुमको ठोर बता देती हूँ, स्थान बताती हूँ कहाँ मिली है। अब जो है दोनों चले गए, बाड़ी प्रीत, उनकी प्रेम जो है बढ़ रहा है, नित्य प्रीति बढ़ रहा है, बाड़ी प्रीत मदन मोहन सो, मदन मोहन जी से प्रीत बढ़ गई, आपके मदन मोहन जी है ना ये श्याम सुंदर जो है, इनसे राधा रानी की प्रेम बढ़ गया। और घर बैठे जसमत, अब जसवा मैया को बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरी तो लाली आई है और श्याम सुंदर को ही ले गई, ए बोर आई, वो उसको जो है बड़बड़ा रही है, बोराई का मतलब अपने मुंह से कुछ ना कुछ कहते हैं उसको बोराई बोलते हैं, बड़बड़ाना। अब कह रही अरे लाला को भी ले गई, कहाँ चली गई जाने, बोराई जसमत पायो परम भागते दिन को दो पढ़े, कह रही है दोनों एक ही पट्टी पढ़े हैं, दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हैं, ये प्रेम की पाठशाला में दो पड़े, एक ही चतुराई सीखी है। परमानंद दास जय पूछो जिन ये खेल जन्माई, परमानंद दास जी कहते हैं इस खेल जो उन्होंने कीला जो सीखी है इसके कौन वर्णन कर सकता है इस लीला का अब जो है श्याम सुंदर कामरी कमरी खो गई, काली कमली जो होती है उसको गोपियां चुरा करके ले गई काली कमली को। अब यशोदा मैया यशोदा से कहते हैं भगवान कृष्ण, मेरी जो काली कमली थी उसको कोई चुरा ले गया काली का। तो नहीं, कौन चुरा ले गया भैया, जंगल में छोड़ आया होगा। उनकी मैया, जंगल में तो मैं लेकर के आया, कोई चोर ले गया उसको, कौन? बड़ी मुश्किल, फिर चिंता करते हैं। तो उसी समय गोपियां आती हैं, तो गोपियां कहती हैं मैंने तेरी मुरली को जमुना जी में जाते हुए देखा, एक है तेरी तेरी कामर जमुना जात बही, जमुना जी में बह गई, जमुना जी में बह गई, तो चलो देख के लाते जमुना जी में। भाई जमुना जी में जो बह गई वो तो बहुत दूर चली गई होगी, और रोने लगे वो। और दूसरी कहती है गोपी, क्या कहती है, तेरी गैया जो थी सुरभि उसको खा गई, तेरी सुरभि जो थी। फिर एक गोपी और आई, मुझे तो मिली और मैं उसको देख के ही आई, लेकिन मुझे ये पता नहीं थी कि तुम्हारी मुरली है वो, तुम्हारी कामर है, नहीं तो मैं उसको उठा लाती। अब एक काम करते हैं, तुम हमारे सामने ठमक ठमक करके नाचो, एक कहे नाचो मेरे आगे, ले दूँ तो नई, मैं तेरी नई ला दूंगी, वो तो गई सो गई, आँचो मेरे आगे। और सूर्य श्याम जसमत के आगे नैनन नीर बही, सूर्य श्याम सूरदास जी कहते हैं श्याम सुंदर जसोदा के आगे रो रहे हैं, उनके नेत्रों में से अब चल अश्रुधारा बह रही है। फिर गौचारण का लीला है, गौचारण की लीला जो है बड़ी विलक्षण है। ठाकुर जी जो लीला करते हैं जसोदा मैया से, कहते हैं मैया मेरी जो बड़ा हो गया हूँ मैं, अब तक तो मैंने बहुत गैया चराई, वो बछड़ा चढ़ाई, अब मैं बड़ा हो गया तो गैया चराने के लिए भेजो मुझे। यशोदा मैया नहीं करती है, भाई तुम तो अभी भी छोटे हो, गैया कैसे चराने भेजू मैं तुमको, गैया तो ये मारेगी कोई, उसे सींग मार देगी, लात मार देगी, पूंछ मार देगी, लग जाएगी तेरे, और तुम मेरे नैनन के तारे हो, नैनों के तारे हो मेरे, तुमको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। वो कह नहीं, मैं तो बिल्कुल जाऊँ। श्याम सुंदर रोने लगे, और श्याम सुंदर रोने लगे तो यशोदा मैया ने बाबा से कहा इनको कोई मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकाला, गंगाचार्य जी को बुलाया। गंगाचार्य जी ने निकाला, गोपाष्टमी का दिन है और कल गोपाष्टमी है, तो आज ही कल इनको चराने भेज दो। तो तैयारी होनी चाहिए एकदम से, कैसे करेगा, कोई जाता है तो अटैची समझाता है, सब सामान लगाता है, और हमारा तो धंधा है गौचारण का, गैयों को चराने का, इसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, पंडित को बुलाया जाएगा, सब ब्रजवासियों को प्रसाद बटेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लाला फिर चला जाना दो चार दिन के बाद में, जब तक तैयारी, वो रोने लगे नहीं तो कल ही जाऊँगा कल, पंडित जी ने कह दिया। अब जो मुहूर्त निकालने के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी बोले कि कल का जो मुहूर्त है निकल गया है, राधा रानी जिस चादर पर सोती हैं, काली कमली पर सोती हैं, उस कमली को बुलाओ, कमली को लाओ, उसको उड़ा करके लाला को कोई नजर बजर नहीं लगेगी, तब गैया चराने जाएंगे। अब गए ब्रजवान बाबा के दरवाजे पे पहुंचे, ब्रजवान जी कैसे आओ नंद जी मिले, क्या चाहिए? वर्गे गर्गाचार्य जी आप कह दो क्या चाहिए, कामरी के लिए संकोच लगता है उनको कहने में। गर्गाचार्य जी कहते मेरा कोई काम नहीं है, आप ही कहो, मेरा क्या काम है, आप जिस काम से आए कहो। पर काली कमली उन्होंने मांगी, जस ब्रजवान जी कहते हैं ये तो फट टूट गई है, मैं इसको कैसे दूं? नई बढ़िया सॉल ला करके देता हूं मैं लाला के लिए, जड़ी है मोतियों से जड़ी हुई है उसे। गर्गाचार्य जी बोले इसी को दे, ये साधारण कमली नहीं है, इसको ब्रह्मा जी ने तो ताना बुना है, और विष्णु ने जो शंकर ने जो इसमें दूसरा धागा लगाया, दो धागे लगते ना, एक हॉरिजॉन्टल एक इस तरह से जो लगते हैं, उनको ताना बाना बोलते हैं, ताना बाना जो है शंकर और ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा की है कि श्याम सुंदर इसको उड़ करके गैया चराने जाएंगे, ऐसा उन्होंने गर्गाचार्य जी ने कहा। उसको लेके आए, उड़ करके चलते हैं, और यशोदा मैया बड़ा उत्सव मनाती है। प्रथम गौ चारण को दिन आज पहला दिन था, फूली फरत यशोदा मैया कीनो है सब साज, विविध भांत बाजे बाजने बैंड बाजे बज रहे, गयो गोश तब जाज। तो इस तरह से श्याम सुंदर जब आगे गए गैया चराने गए, और यशोदा मैया ने बहुत सारे व्यंजन भेजे, मेरा लाला भूखा नहीं रह जाए। अब श्याम सुंदर के लिए हमारे यहाँ ब्रिज में जो जाती है दिन के भोजन प्रारंभ में जो लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसको तो कहते हैं कलेऊ, और दोपहर का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं छाख, और शाम का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं ब्यारू। अब छाख कही है तो ग्वाल वाल बोले कि लाला हमको तो भूख लग रही है, तो मन के कहीं से आ रही होंगी छकेहारी, छाख लेकर के आ रही होंगे, तो मन के देखो अब भूख से रहा नहीं जाता, बंसी बजाओ तुम। जब बंसी बजाई श्याम सुनने, तो गोपियों ने सुना और आई लौट करके, तो कहती है आगे आओ री छकेहारी, छकेहारी में छाख को लेने आई है जो, आओ री छकेहारी मैया छाख सवेरे पठी, तुम कित रही अबारी, तुम कहाँ रह गई थी। तो वो कहते अहो गोपाल गेल हम भूली, गेल कहते रास्ता को, गेल हम भूली ताते भई अबार, जब तुम टेरे तब हम आई, जब तुमने टेर लगाई है तब हम आई हैं, मधुर बोलन पर बारी। उनको कहते गूंजा लड़ुआ मौट खटमली, व्यंजनों के नामे सब जोर चाहवे सो भाव, जोर मंडली भोजन कीजे ऋषि के इस बल जाई। हम श्याम सुंदर जब प्रसाद पाते हैं तो गोल मंडलाकार में खाते, जैसे है ना आपका ये बिल्कुल राउंड, इसे अष्टदमल का कमल होता है, तो जो वहां बैठेगा चारों तरफ बैठेंगे तो सबका मुंह एक दूसरे को दिखाई देगा। तो श्याम सुंदर ऐसे ही बैठे हैं गोपाओं के मध्य में, अब पा रहे हैं वो सब खा रहे हैं, तो आज दध मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल, भावत मोहत त्यौहारो झूठो चंचल नैन विशाल। श्याम सुंदर कहते आपका जो प्रसादी है भोजन है झूठा हमको बहुत अच्छा लगता है, हे कमल नेत्र है बड़े नेत्र वाले श्याम सुंदर, आपका जो प्रसाद है झूठा प्रसाद हमको बहुत अच्छा लगता है। आने पात पत्ता कहते हैं, जैसे कदम के पत्ता, कमल के पत्ता, विभिन्न प्रकार केला के पत्ता, बड़े बड़े पत्ते मंगाए कदम में तो दोना अपने आप बन जाते हैं। आने पात बनाए दोना, द्रोण बनाए उनके, और दियो समन को बांट, सबको बांट दिया, और कुछ ऐसे भी रह गए जिनको नहीं मिला, और जिन नहीं पाए सुनो मेरे भैया मेरी हथेरी चाट, वो कहते मेरी हथेरी को चाट ले, और चाटता है वो, तो कहते क्या कहते हैं ग्वालवार, बहुत दिना हम रहे कुमुदवन, कुमुदवन में तुम्हारे से बहुत दिन गैया चराई है, कृष्ण त्यारे साथ, और ऐसा स्वाद कभी नहीं आया सुन गोकुल के नाथ, ऐसा स्वाद कभी नहीं आया। आपन हसत हसावत ग्वालन मानुष लीला रूप, और परमानंद हम सब त्रुव जाने त्रुम त्रुवन के भू, तुम तीन लोगों के स्वामी हो ये हमको पता है। अब उस दिन ही क्यों लगा अच्छा भाई, रोजाना गाय चराते थे, रोजाना प्रसाद मिलता था, छाख मिलती थी, आज क्यों बढ़िया लगा। तो हमारे महाराज जी बताते हैं हसत, उस दिन राधा रानी भी थी साथ में, उस दिन राधा रानी भी साथ में थी, और जो प्रसाद जो था वो दोनों का प्रसादी था, सम्मिलित प्रसाद था। तो इसका हरिराज जी ने गाया है, क्या गाया है, हमारे ब्रज की एक परंपरा है, आपके यहाँ भी है सब जगह, जैसे किसी को चाय ऑफर करनी हो, दूध भोजन करना हो, पानी देना हो, तो पानी का गिलास है वो दूसरे को दे देते, आप लीजिए पहले, आप लीजिए है, मधुमादा भी ऐसा है ना, दूसरे को देते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं। तो लाड़ उसको जो है हसत दूध पीवत नाथ, और उन्होंने जो है क्या कहा है, ललता कनक कटोरा भरे हर, कनक कटोरा सोने के कटोरा में प्रसाद भरा हुआ है, और दियो श्याम सुंदर, कनक श्याम सुंदर के हाथ में दे दिया। अब श्याम सुंदर किसको ऑफर करेंगे, राधा रानी को, और उन्होंने ऐसा धन लिया रुपी जाए, दूसरे का सम्मान तो करना ही है, भारतीय परंपरा है। उन्होंने जो जैसे दिया तो उन्होंने लाडली, लाडली जी को दे दिया, लाडली अचबाय, अचबाय जानते हो, जैसे संध्या वंदन करते हैं हम लोग तो थोड़ा सा जल लेते हैं अचबान, तो लाडली जी को तो अचवाया उन्होंने, प्रसादी कराया, और पीछे आप अघात, पीछे उसको पी गए पूरे को, अघात अघात का मतलब है भरपेट पिया खाया, जब भरपेट पी लिया खा लिया रह गए हाथ, वो कहते जिन नहीं पाया सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। तो वो उसमें जो है श्री श्याम सुंदर का जो सर्वांग है वो बड़ा मधुर है, अधरम मधरम बदरम मधरम नैनम मधरम हस्तम मधरम है, नहीं मधुरा अष्टक बल्लभाचार्य जी ने गाया है, तो उनका स्त्री अंग तो वैसे ही मधुर है, और ठाकुर जी का प्रसाद ही तो कैसा मधुर लगा होगा। अब वापस चलते हैं, वापस जब चल रहे कदम टेर से गैया चराने के बाद में वापस जब आ रहे हैं, तो कदम के ऊपर चढ़ करके बंसी बजाते हैं, कदम चढ़ कान बजावत गैया, कदम चढ़ कान बजावत बंसी बजा रहे हैं और बुला रहे गैयाओं को, कारी काजर धोरी धूमर अब घर को बगदैया। कारी कारे रंग की है, कैसी है, काजर जैसी काली, एकदम काली, इसका एक भी बाल सफेद नहीं है, खुर से लेकर के सींग तक पूरी काली है। और धोरी सफेद कहते हैं, ब्रज भाषा का शब्द है, सफेद को वहां धोरी बोलते हैं, सफेद दूध को भी रंग सफेद है दूध जैसा, ऐसी बिल्कुल व्हाइट है गैया। और तीसरी कैसी है, धूमरी, धूम कहते हैं धुआं को, स्मोकी, जैसे धुआं का रंग होता है ऐसी है धुआं का। अब घर को बगदई, आपको अब चलते हैं, वापस चल रहे हैं नंदगाम की तरफ में। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गायों में आ रहे हैं, आगे भी गैया है पीछे भी गैया है बगल में भी गैया है, चारों तरफ गवाम मध्य बसाम, हम गायों के मध्य में निवास करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। गायों को लेकर के चल रहे हैं, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गायन में ही बसव को गोविंदा को भाव है। गायन सो ब्रिज छायो बैकुंठ हो बिसरायो, और गैयन के हित गिर कर ले उठावे, गिरिराज जी को भी जो है गैयाओं के हित ये उठा रहे हैं वो। अब चलते हैं गायों के बाद में आगे चल रहे हैं, भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वो कहे ओहो वेदना तो पे अचरा पसार मांगू, विदाता हम तुमसे झोली पसार करके मांगते हैं, जन्म जन्म दीजो मोहे याई ब्रज बसवो। आशेश्वर जगह है नंदगांव में तीर कदम के पास में, वहाँ सब ब्रजवासी लोग मांगते हैं कि हमको जो है इस ब्रज का ही वास मिले, अहिर की जात समीप नंदघर, घरी घरी हेर हेर हस हसबो, अहिर की जात समीप नंदघर। इस तरह से जो है चीत स्वामी गिरधारी बिठलेश बपुधारी गाय चलती है आगे, कारी काजर धोरी धूमर, चलते चलते हटक हटक गाय हटक जाती है, रुक जाती है, गाय देखती है आगे मैं चल रही हूँ, पीछे गौ गोपाल अच्युता। श्रीमद् भागवतम में आया गौचारण जब लौटते हैं उस समय का आमनी का, सबसे आगे है गो गैया, उसके बाद में है ग्वाला गोपाल, उसके बाद में है अच्युत, अच्युत माने भगवान कृष्ण विष्णु, भगवान को अच्युत शब्द आता है, अच्युत चरण तरंगनी शिव श्री मालति माय हर ने बसाया सुर सरी की जो इंदलवाल। अच्युत भगवान कृष्ण के लिए भी लगता है, विष्णु भगवान का तो यही है। तो श्याम सुंदर की तरफ मुड़ करके देख रही गैया, ग्वाल बाल भी देखते हैं, श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं, बरहा पीड़ुम नट बपो हो कर्णियो कर्णकारम बिभ्रदवास है कनक पसीम, ये उनका उस समय का गई चराने के लौटने के समय का रूप वर्णन है। बनमाला बहन रखी है, सुंदर सुंदर कन्नीर के फूट लटके हुए हैं, लटका चलत लटके लगते डंडा हाथ में लगा हुआ है, लौट रहे हैं, हटक हटक गाय रुक रही है, गैयाएं ठटक ठटक रही, गोकुल की गली अत सांकरी, छोटी छोटी गलियां हैं, गैयाओं का झुंड बहुत तगड़ा है, तो रुक करके दो दो चार चार प्रवेश करती हैं। ऊपर ब्रजांगनाएं खड़ी हुई हैं, ब्रज की गोपियां खड़ी हुई हैं, कोई छत पर टेरेस पर खड़ी हुई है, कोई जंगला में बैठी है, कोई जो है छोटे छोटे छेद कर रखे हैं घरों में, उनमें हवा के लिए रोशनी के लिए निकालते हैं ना जगह जगह पर, उनमें बैठी हुई हैं। उनमें से चंप कली कुंद कली, चंपा की कली है चंपा फूल की, कुंद की कली है गुलाब की कली है कमल की कली है, उन पर बरसा कर रही है, तो फूल लग जाएगा, फूल से कहीं चोट नहीं लग जाए, इसलिए उन्होंने पंखड़ी निकाल दी उनकी, फूलों को तोड़ दिया, तामे लिखे हैं दिमाग उसके ऊपर में संदेश भेजा, कहते हैं ना उन्होंने लव लेटर लिखा, जो मान लीजिए कब मिलोगे श्याम सुंदर, तामे लिखे हैं द्वे आंकरी, दो शब्द लिखे हैं, और दो शब्द है मिलन की इच्छा है उनकी, सुबह से गए शाम को आ रहे, कितनी बिरह में तड़फ रही है, आप हमको जो कम मिलोगे संदेश दे रही है, और श्याम सुंदर पर तो कोई अंकुश है नहीं भैया, उसको किसी से कहते हैं तो इससे नहीं मिलता, मैं मने कर दिया मुंह फेर लिया उससे, और दूसरे से कहते हैं आ रहा हूँ तेरे घर ही आ रहा हूँ मैं, और ब्रिजवासी लोग कहते हैं ठाकुर जी का जो मन है ना वो बिल्कुल बंदर की तरह है, बंदर जैसे होता है ना जिस डाल पर बैठता फल दूसरी उसकी डाल के खाता है, वो मरकत त्रणादि भी, अब जो है जिससे मने किया उसके घर तो पहुंच गए, और जिससे कहा हम तेरे घर आ रहे हैं उसके घर पहुंचे नहीं, अब वो बेचारी तड़प रही है, उन्हें श्याम सुंदर ने कहा मैं आऊंगा, तैयारी कर रही है, घर को सजा रही है, जगह जगह पर रंगोली बना रही है, उन्होंने जो पीरी बेसर पीरे जो नाक में बुलाक पहना, पीरे को तो सोने का पीरी कलर नहीं पहनी है, आभूषण पहने सोने के, और पीरी परी पर पिया नहीं आए। जैसे सुबह होता है ना 5 बजे के लगभग जगते हैं, देखते हैं 5:30 बजे 6 बजे कि सूर्योदय जब उससे होने को होता है उससे पहले बादल पीला हो जाता है, तो कहते उसको कहते हैं ब्रजवासी लोग पीरी फटी, आपके जैसे वस्त्र पहनते हैं पीले पीले, पीरी फटी। पर पीरी तो फट गई यानी सूर्योदय होने को है लेकिन प्रीतम नहीं आए, पिया नहीं आए, तड़प रही है वो। और जिसके यहाँ पहुँच गए और उसके यहाँ उत्सव बन रहा है, दिवाली बन रही है, आवो सखी मिल मंगल गावो, मेरे घर आए श्याम सुंदर कन्हाई, श्याम सुंदर आए, मुँह सम कौन बड़ भागी, घर बैठे ऐसी निधि आई, घर बैठे ऐसी निधि आ गई जो मेरे घर पे उजाला हो गया है। वो ऐसी लगती है जैसे मुरझी बेल हरी है जाई, जैसे कोई बेल हो और सूख गई हो, उसमें अमृत उड़ेल दिया जाए तो हरी हो जाती है, पानी डाल दिया जाए तो हरी हो जाती है, ऐसे ही उस गोपी का मन जो है बिल्कुल हरा भरा हो गया श्याम सुंदर को प्राप्त करके। अब जो है जसोदा मैया आरती करती है, पहले हंसी मजाक होती है, श्याम सुंदर जैसे ही नंद यहाँ आए, नंदगांव में प्रवेश किया गाय चरा करके, तो रोने लगे। वो ग्वाल वालों को इस उससे दिया था कि मेरा लड़का हंसी खुशी घर लाना, हंसी खुशी घर लेकर के आओगे तो मुझे खुशी होगी, और रोया आया पीट करके आया तो मारोगे पीटोगे रोएगा ये, ऐसे लाओगे तो मुझे दुख होगा। अब रोने लगे वो, और ग्वाल बाल उनको मना रहे हैं, तो कहते हैं चुटकला, जैसे कहते हैं बच्चे चुटकला छोटे छोटे बच्चों को सुनाते हैं, तो ये कहता है देख श्याम सुंदर एक चुटकला सुनाता हूँ तुमको, वो कैसी है बल्कि एक जो है चार खाई बासी कूसी, एक गोपी कह रही है अपने उससे घरवारे से, चार खाई बासी कूसी चार खाई सद, और बड़े जेंट के दिनों तो आया जेऊंगी तो अब, तो कहता है 4 किलो आटे की 4 रोटी बनाई उसने, 4 खाई बासी रात को बना करके रखी उसने, तो 4 किलो आटे की तो हो गई भी 4 बासी, बासी कूसी मतलब रात की रखी हुई, और इतने आटे की उसने बनाई सुबह तो कितनी हो गई 8 किलो आटे की रोटी हो गई, उनको वो कर गई चढ़ा गई। वो कहती है अब मेरे निमंत्रण आया मेरे जेठ के यहाँ से, अब भोजन करने जाऊंगी उसके यहाँ, तो श्याम सुंदर हंस गए, 4 खाई बासी कूसी 4 खाई सद, और बड़े जेठ के दिन 900 आयो जेऊंगी तो अब, माधव सुन माधव, माधव सुन माधव। पर दूसरा कहता है कि कारी दुल्हन काजर दे, और कारी दुल्हन काजर दे कैसी, यानी काली एक औरत है उसके एक आंख है उस आंख में काजल लगा रही है, और बूढ़ो बलम भलैया ले, कारी का जो कहानी है उसकी शादी वैसे तो हो गई नहीं तो अनमेल विवाह हुआ बूढ़े के साथ में, और वो उसके भलैया जा रहा है आगे पीछे डोल रहा है, बूढ़ो बलम भलैया रे माधव सुन माधव, श्याम सुंदर को हंसी आ गई। इस तरह से अनेक चुटकला उनको सुनाए हैं, तो के श्याम सुंदर जब लेकर के कंधे पे चढ़ा करके ब्रजवासी लोग आए, जसोदा मैया आरती करती है खुशी हो गई, खुश होकर के करती है हरि आए आनंद भय माई, हरि आ गए तो आनंद हो गया, करत आरती जसोदा मैया फूली ना समाई, फूली नहीं समाती है आनंद हो गया, और खिरक खोल गैया कर दी नहीं बछरा रही, सब खिरक को खोल करके गैयाओं को कर दिया, और वहाँ गैया भी संभाल रही है, और दूध दुहाए कहे मनमोहन माखन दे री माए, दूध दुहा दिया और उनको कहते माखन मेरे लिए दीजिए, तो वो कहते सद लोनी तो हो सवेरे पीबो दूध अघाए, सद लोनी जो ताजा जो होगी वो तो सवेरे होगी, अब तुम दूध को पी अच्छी तरह से दूध पी लो। इतने में एक सखी सामरी टेरत पहुंची आए, एक सामरी सखी आई, वो कहती है तुमने दूध देना हमारी गई लाला गैया रही रमाए, मेरी गैया रमा रही है उसको दूध को काटने चलो। श्याम सुंदर गए उसके साथ में, सखी सामरी की मोहन ने जाय दुहाई गाय, उनको गाय को दुहा दिया, वो आधो दूध लेत दोहनी में जो पात्र है बाल्टी इत्यादि के जो है उसमें आधा दूध गया, वो आधे गए दूध थनों को चढ़ा गए, और दूध देख दोहनी को सखी गई मुस्का गई। ब्रजराज कुमार ने, ब्रजराज मन नंद बाबा उनका कुमार है भगवान कृष्ण, ब्रजराज कुमार ने लीलो भोग लगाए, भोग लगा लिया बीच में, खुश हो गई वो। इस तरह से गौचारण की लीला, गिरिराज जी की भैया बता देना मुझे जब आपके कितनी देर बोलना है क्या करना है, ठीक है चलो बोल नंद के लाला की, ठीक है। गिरिराज जी की कथा कहते थोड़ी सी, गिरिराज जी आओगे? चलो कूदा वो नंद के लाला की जाए। ठीक है भैया,
हरे कृष्ण।
ठीक है भैया,
हरे कृष्णा। हम गोस्वामी जी का धन्यवाद करेंगे तीन बार हरि बोल बोल के। हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल। उन्होंने बहुत ही सुंदर ब्रज की कथा की है। थैंक यू वेरी मच गोस्वामी जी। हरे कृष्ण।
वृंदावन में भी रहता हूँ।